ओम शांति। आज हम सभी के बीच भगवान की बगिया का चैतन्य फूल उपस्थित है। हम सभी आदरणीय रमा दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आध्यात्म के प्रति रुचि, परमात्मा के प्रति प्यार, जीवन में सादगी आपकी विशेषता है। बचपन से ही आपने ज्ञान को आत्मसात किया। विगत 35 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। भोपाल, लखनऊ, अनेक स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। वर्तमान समय कानपुर रतनलाल नगर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति फलता है कोई कोई, सभी प्रवीण है आदर्शों की बातें करने में, परंतु त्याग के पथ पर चलता है कोई कोई, चलता है कोई कोई। आपके जीवन से अनेकों को प्रेरणा मिलती है। आज संगम युग, भाग्य बनाने का युग, इस विषय पर हम सबकी झोली आप ज्ञान रत्नों से भरेंगी। आदरणीय रमा दीदी।
ओम शांति। आज टॉपिक जो आपका है, संगम युग, भाग्य बनाने की बेला, और आप सभी समझदार बाबा के बच्चे बैठे हैं और सभी भली भांति जानते भी हैं कि यही संगम भाग्य बनाने का स्वर्णिम अवसर है। और कोई युग में हमारा नसीब या भाग्य या तकदीर भगवान के द्वारा नहीं बनती है। द्वापर युग से साधु संतों महात्माओं के द्वारा हमारी जो तकदीर बनती है अल्पकाल की, एक जन्म की, और संगम युग पर बाबा कहते बच्चे 21 जन्म की तो बनती ही है और साथ में आज भी जो हम बच्चे बैठे हैं वो तकदीर बना के ही आई है, तभी ये हम ईसरी पाठशाला में बैठे हैं। तो यूं कहें पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाने का यही संगम युग है। कुछ समय के लिए हम बाबा के पास मधुबन पहुंचे हैं। जितना चाहें उतना हम अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य जो बनता है तो कहा जाता है कि त्याग से ही भाग्य है। आज बच्चा पढ़ लिख कर त्याग करके कितना ऊंचा भाग्य बना लेता है, जो हम सभी देखते हैं, कितने बड़े बड़े अफसर कितनी कमाई करते हैं। और हम बच्चे अपने त्याग से कितना श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं, तो क्या समझा जाए कि भाग्य बना रही है या भाग्य बन गया है या अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है, कौन सी लाइन में खड़े हैं? क्या कहे, भाग्य बन गया है? हाथ खड़ा करे जिनका बन गया है, बन गया है, ताड़ी बजा ले अपने बन गया में। और कौन कौन बाबा के बच्चे अभी भाग बना रही है, बना रही है, चलो फिर भी अपने लिए ताड़ी बजाए, बना रही है, लाइन में तो लगे हैं ना। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा भाग बांट रहे थे तो तुम कहां खड़े हुए थे, पीछे की लाइन में या आगे की लाइन में? ऐसा सबने सुना होगा कि ये वही समय है जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा हम सब आत्माओं का भाग बनाने बाबा आ गई है। हम सभी बच्चे अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तकदीर की लकीर खींचने की कलम भगवान ने हमारे हाथों में ही दे दी है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता भी है, परमपिता बोलते हैं ना। तो बाबा कहते, बच्चे जितनी चाहो उतनी तकदीर की लकीर स्वयं खींच सकते हो। ध्यान रहे, क्योंकि साथ में माया बैठी है। हम बच्चे कौन नहीं चाहेंगे कि अपनी तकदीर की लकीर बहुत श्रेष्ठ, उत्तम और अच्छी खींच सके, परंतु होता क्या है, दो चीजों पर हमारा अटेंशन कम हो जाता है। पांच विकारों पर तो ध्यान रहता है, लेकिन दो चीजें जो हमारे भाग्य और हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनने में बाधक है, वो है आलस और अलवेलापन। आपने सुना होगा कि आलसी जो होता है ना व्यक्ति, वो तकदीर बना सकता है, बना सकता है आलसी? और अलवेलापन, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ये भी हमारे पुरुषार्थ में रुकावट है, भाग्य बनाने में क्या है, बाधक है। जैसा कि क्लासेस में दिखने में भी आता है कि आज सर्दी है, आज बरसात है, आज गर्मी है, इस कारण योग में कौन उठे? क्योंकि बाबा भी जब आता है ना सवेरे सवेरे, तकदीर भी हमारी कब बनती है, अमृत वेले का महत्व तो बताया है ना बाबा ने, वो सवेरे सवेरे आ जाता है और आकर जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा भी है कि बच्चे जो मुझे याद करते हैं ना, उनकी सारो कारोबार मैं करता हूँ, तो मुझे कौन सा काम दिया हुआ है बाबा ने? याद का काम दिया है, ना कि सोचने का काम दिया है। सोचने का भी काम कौन करता है? अगर नहीं पता हो तो आज से पता कर लीजिएगा कि सोचने का भी काम बाबा करता है। सिर्फ बाबा कहते बच्चे मुझे क्या करो अमृत बेले, याद करो। लेकिन जहां आलस्य आया वहां क्या हुआ? क्या हुआ? तकदीर की जो लकीर खींचने में क्या हो गया? बड़ी लकीर। क्लास में भी बहुत ठंड है, कौन जाए? तो ये चीजें जो है आलस्य और अलवेलापन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल कल करते क्या होगा? हम लोग दूसरों को समझाते हैं ना, खुद इतने समझदार बैठे हैं, तो समझ में आ रहा है कि कोई भी काम पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। बाबा की जो मुरली चलती है पूरी तकदीर पर चलती है, और अगर उसमें होमवर्क भी मिलता है, उसमें सम्मान भी होता है, उस पर हमारा अटेंशन नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं? अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सब के लिए बाबा मुरली में यही कहता है, बच्चे विचार सागर क्या करो, मंथन करो, उसके लिए टाइम दो। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं ना लौकिक जगत में, वो भी अपने बिजनेस में क्या देते हैं? समय देते हैं ना। एक बार भोजन भी रखा होगा लेकिन उनकी लाख की, दो लाख की कुछ कमाई हो रही होगी तो भोजन भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ना, कि मेरा दो लाख का सौदा या एक करोड़ का सौदा नहीं हो पाएगा, लॉस हो जाएगा। हम बच्चे इतना ही अपने प्रति शुभ चिंतक हैं, औरों के प्रति तो होते हैं, लेकिन क्या स्वयं के प्रति हम शुभ चिंतक हैं? क्योंकि अनेक जन्मों का यही संगम, कोई और युग नहीं, इसी में ही मुझे अपना भाग्य बनाना है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि भाग्य बड़ा या भगवान बड़ा, यूं कहें पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्या कहेंगे? बहने क्या कह रही है? पुरुषार्थ बड़ा। अब भाग्य बड़ा या भगवान बड़ा? भगवान बड़ा। बहुत अच्छी बात, भगवान तो बड़ा है ही। उस पर एक कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक बार भगवान ऊपर बैठे थे, पार्वती जी भी बैठी हुई थी, नीचे एक बहुत दरिद्र व्यक्ति जिसके पास ना तो खाने को ना पहनने को कुछ भी नहीं था, दोनों ही ये दृश्य ऊपर से देख रहे थे। पार्वती जी को बहुत रहम आ रहा था उसको देखकर, और पार्वती जी भगवान को प्रश्न कर रही थी कि भगवान कुछ करो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है कि मनुष्य लोक का प्राणी इतना दुखी, इतना दलिद्र, आप कुछ करिए। भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि पार्वती जी उसका भाग्य ही यही है, का कुछ भी हो लेकिन आप उसके लिए कुछ करिए। जब बहुत ज्यादा कहा तो कहा ठीक है मैं इसके लिए कुछ करता हूं, और ऊपर बहुत सोने की गठरी बनाई, कहा मैं ये आगे चलेगा तो मैं इसके रास्ते पर डाल दूंगा, और इसको जो ये धन संपत्ति मिलेगी इसे बहुत मालामाल और संपन्न हो जाएगा। अब उस दरिद्र व्यक्ति को मन में उस दिन क्या संकल्प आ रहा है कि भगवान ने मुझे तो बहुत अच्छा बनाया है, मेरे को आंखें भी दी हैं, आज मैं आंखें बंद करके चलता हूं और मैं देखता हूं कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। और उसने क्या किया, आंखें बंद करके वो चल दिया। रास्ते में जैसे ही आया भगवान ने वो पोटली नीचे फेंक दी, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, उसको दिखाई नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। फिर जब उसने आंख से पट्टी खोली तो भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान मुझे आपने आंखें तो दी है, अंधे कैसे चलते हैं बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने पार्वती जी से कहा कि देखो पार्वती जी, इसके भाग्य में नहीं है, कोई कुछ भी कर ले परंतु इसके भाग्य में नहीं है तो इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए आप जरा सोचिए कि भगवान बड़ा या भाग्य बड़ा, क्या बड़ा। और भाग्य भी किससे बनता है, कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से, पुरुषार्थ से, क्योंकि आत्मा पुरुष जब इस देह रूपी रथ में है तभी वो पुरुषार्थ कर सकती है, और जब आत्मा इस रथ से हट जाएगी तो क्या पुरुषार्थ कर सकती है। तो जो ये हमको शरीर रूपी रथ मिला है ये बहुत अमूल्य है, क्योंकि इसी शरीर से आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है जो आज कौड़ी से कैसी बन जाती है, हीरे तुल्य बन जाती है, हीरे समान बन जाती है। इसलिए इन सब बातों पर, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, कितना कीमती है पता है, कितना समय हम बाबा के बच्चे सफल करते हैं, और कितना समय हम व्यर्थ गंवा देते हैं, इस पर हमारा विशेष अटेंशन चाहिए। क्योंकि एक युग की कमाई जमा नहीं करनी है, हमें चारों युगों की कमाई क्या करनी है, जमा करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत बहुत मेहनत। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं करो, मेहनत जब करते हो जब मोहब्बत नहीं है, परमात्म स्नेह नहीं है। और जहां परमात्म स्नेह है, मोहब्बत है, वहां क्या नहीं है, मेहनत नहीं है। जो बाबा कहता जा रहा है उस पर हमें बहुत अटेंशन रखना है और उसी प्रमाण चलते रहना है। हमारे नंबर क्या होते जाएंगे, कॉलेज में आए हैं ना, सब कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हैं? बुढ़िया बुढ़िया भी कहती है हम कहाँ बैठे हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट को देखा है आप लोगों ने, क्योंकि कानपुर में आईआईटी कॉलेज है और मैं उस कॉलेज में गई थी। मैंने देखा वहां के स्टूडेंट को, आप यकीन करेंगे ऐसे स्टूडेंट पढ़ रहे थे कि मैं लाइब्रेरी से गई, उन्होंने मुझे उठा के भी नजर नहीं देखा। कोई टेबल के नीचे बैठे हैं, कोई लाइब्रेरी में छिपे बैठे हैं, कोई कहां बैठे हैं, और वो नजर उठा भी नहीं रहे कितने लोग निकल रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितनी लगन है उनमें। वो तो एक आईआईटी के इंजीनियर बन के निकलेंगे, तब इतनी लगन के साथ वो पढ़ाई कर रही है। और हम बाबा के बच्चे इस गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पढ़ाई पढ़कर क्या बनेंगे, इससे ऊंचा कोई नहीं बनेगा, ना तो इससे ऊंचा बनाने वाला किसी को टीचर मिला, हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, और हम भी उसके हाईएस्ट स्टूडेंट है। हायर एजुकेशन पढ़ रही है और क्या बनने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। ये समान है, सभी को समान सेल्फ रिस्पेक्ट है सभी को, नहीं बोलते हैं, है बस श्रेष्ठ समान, कोई मान दे या ना दे, लेकिन रोज आत्मा को मान दे दो कि हे आत्मा तुम क्या बनने वाली हो, तुम्हारे जैसा ऊंच भाग्यवान संसार में भी कोई नहीं है, ना है ना आगे होगा। इतनी ऊंची मैं आत्मा हूं जिसको भगवान भी इतनी ऊंची नजर से क्या कर रहा है, देख रहा है। आप देखो बच्चा पैदा होता है ना, अभी बच्चा पैदा हुआ माँ बाप उसको किस नजर से देखने लगते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्या क्या नजर से देखते हैं। अभी बच्चे को मतलब ही नहीं है, लेकिन माँ बाप उसके लिए क्या क्या सोच लेते, ये बनेगा वो बनेगा। ऐसे ही मेरे माता पिता, हम कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, मेरे माता पिता मेरे लिए क्या सोच रही है कि मेरा एक एक स्टूडेंट क्या बनेगा। कोई कोई बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, कॉलेज में सारे स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं। कानपुर का पंडित दीनदयाल स्कूल है, वहाँ टीचर भी बहुत योग्य, स्टूडेंट भी बहुत योग्य है, अब सारे स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं। तो हम किस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, टीचर भी कैसा है, टीचर भी कैसा है, ऐसा योग्य टीचर है जिसने क्या किया है, मुरली जो है हमको जो मिलती है, योग्य टीचर बहुत कठिन सब्जेक्ट को भी जब सरल बना करके हम बच्चों के आगे रख देता है, ऐसा टीचर है ना। ये ज्ञान, ये पढ़ाई देवी देवता बनने वाली इतनी इजी नहीं है, लेकिन जो टीचर है इतना योग्य है कि उसने उस पढ़ाई को क्या किया है, इसलिए सरल कर दिया कि हमारे हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये पढ़ाई समझ में आ सके, पढ़े लिखे अनपढ़े सभी को समझ में आ जाए। आ रही है ना अनपढ़ी माताओं को, क्योंकि वो हर एक का भाग्य बनाना जानता है, चाहता है। इस पर हम टीचर के साथ उसका साथ दे, वो तो स्कूल में आ गया पढ़ाने, अब स्टूडेंट ना आए क्या होता है क्लास में। मधुबन तो सब आना चाहते हैं कि मधुबन चले, मधुबन बहन जी ले चलो, पर रोज की क्लास कौन करते, वो हाथ खड़ा करे रोज की क्लास, सब सब, तो फिर मुझे ही ताली बजानी पड़ेगी अगर रोज की क्लास करते हैं तो। वहां ठंडी गर्मी नहीं देखते हैं, नहीं देखते, तब तो सब टीचर बहने बहुत खुश हो जाएंगी। टीचर बहने बैठी है यहाँ पर, नहीं बैठी है, टीचरे तो बहुत खुश हो जाएंगी कि हमारी क्लास तो भरपूर हो गई, रोज ही हमारे स्टूडेंट आ रही है। लेकिन अमृत बेले योग करना और क्लास में रोज जाना, आपको लगता है कि मुरली तो मोबाइल पे भी आने लगी है, उसपे भी पढ़ लेंगे, टीवी के नीचे भी आने लगी है, उसपे भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक क्लास में जाके रेगुलर पढ़ाई पढ़ना और एक मुरली में पढ़ लेना कि मोबाइल में पढ़ लेना, दोनों में कुछ फर्क नजर आता है या नहीं? आता है ना। वहां आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, पहली बात। जो हम सारा दिन उस निगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि लौकिक जगत कैसा है, पूरा निगेटिव वाइब्रेशन वाला है, और हम सारा दिन उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमको भी वो वाइब्रेशन टच करने लगते हैं। अभी मुझे भी पॉजिटिव रहना है, औरों को भी पॉजिटिव करना है, वो वाइब्रेशन कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आश्रम पर मिलेंगे। पहली बात। और दूसरी बात, आपको बाबा का प्यार मिलेगा। मोबाइल से पढ़ने से वो प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे को देखो प्यार मिलता है ना, टीचर का बहुत ऊंचा हो जाता है। मैंने देखा हमारी क्लास घर में मेरे भाई को पढ़ाने के लिए टीचर आता था, हर बात में शाबाश 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 करता रहता था। शाबाश करते करते उसने भाई को बहुत बड़ा अफसर बना दिया, सिर्फ शाबाश करते करते। आज लौकिक जगत में बहुत बड़ा ग्रेट वन अफसर बन गया। तो ये सब चीजों को हमें महत्व का पता होना चाहिए कि हम भगवान के घर जाते हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। और दूसरा जो हमें परमात्म प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, कभी किसी से भी नहीं मिलेगा, कभी कोई युग में नहीं मिलेगा, कितना भी कोशिश कर लो। इसलिए मुझे एक घड़ी आधी घड़ी जो दूसरों को समझाते हैं, एक घंटा किसको देना है? स्वयं को देना है। 24 घंटे में एक घंटा अपना भाग्य बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बोलिए आप लोग, कुछ भी हो जाए क्या करेंगे? हमें देना है, क्योंकि संसार में कितना कमा लेंगे। भौतिकता हमें क्या सिखाती है और आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है? भौतिकता में बटोरो बटोरो बटोरो, यहां से बटोर लो, वहां से बटोर लो, वहां से कर लो, ये कर लो, सारा दिन बुद्धि मन क्या होता रहता है? चलता ही रहता है, शांत नहीं होता है। लेकिन एक घंटे सवेरे सवेरे हम बाबा के घर जाते हैं और अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? त्याग त्याग त्याग, दोनों में फर्क है ना? क्या करेंगे, आध्यात्म के पथ पर चलेंगे या भौतिकता के पथ पर चलेंगे? क्या करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, अब कदम आगे बढ़ा दिया ना, अध्यात्म की तरफ बढ़ा दिया, पीछे हटाएंगे नहीं? हटाएंगे ना, अब हमने कदम आगे बढ़ा दिया। हमें नींद का भी त्याग करना पड़े तो क्या करेंगे? जिस समय नींद आए तो सोचो, जो सोवत है सो, जो जागत है सो पावत है, उस समय ये गीत तुरंत गाना शुरू कर दो। फिर सुबह की क्लास में भी आ जाता है आलस्य, उस समय भी कहो भगवान आ चुका है और मैं नहीं पहुंच रहा हूं, ये उसी से मिलन का समय है, ये भाग्य बनाने का समय है। अच्छी हमें मन में अच्छी चीजें बुद्धि में भरने का, शुद्ध चीजें भरने का ही समय है, ये वही समय है जो सारा समय सारा दिन आपको पॉजिटिव रखेगा। आपकी हर विपरीत परिस्थिति में ये आपको क्या करेगा? मदद करेगा, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां, उतार चढ़ाव सब कुछ आती ही रहेंगी। उसमें हम कैसे अपने आप को एक रस रख सके, अपने को एकाग्र कर सके, एकांतवासी बन सके, उसके लिए यही सुबह का समय है कि एक घंटे जा करके अपनी पढ़ाई पढ़ करके ज्ञान रत्नों से झोली भर के, और यही रत्न क्या बन जाएंगे? बाबा कहते हैं ना, आज यही रत्न ज्ञान के, कल धन दौलत, कितने माला माल, कितने संपन्न बन जाएंगे। अनुभव का समय यही है, प्राप्ति का समय कौन सा है? यही संगम है। किसान को भी समय का ज्ञान है, हम सब भी कौन हैं? हम सब भी किसान हैं। एक बार एक किसान से एक भिक्षा मांगने वाला भीख मांगने पहुंचा और जब भीख किसान से मांग रहा है तो उसने देखा ये तो पूरा शरीर वरीर सब स्वस्थ, सब कुछ ठीक ठाक है, ये भीख क्यों मांग रहा है? किसान ने उससे पूछा, भाई आप तो सब तरह से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, ठीक है, आप क्यों भीख मांग रहे हो? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, किसानी करता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, कुछ को और को पालता हूँ, और तुम हष्ट पुष्ट होके भीख मांग रहे हो? तो उसने क्या कहा कि मैं जो भीख मांग रहा हूं वो किस लिए मांग रहा हूं? कि जो आप मुझे ये भीख दे रहे हैं ना, उससे मेरी तृप्ति जरूर हो रही है, लेकिन मैं भी एक बहुत बड़ा किसान हूँ। क्या आप कैसे किसान हैं? आप तो भीख मांग रही है। क्या मैं ऐसे किसान हूँ कि मैं ज्ञान का बीज बोने वाला हूँ और योग का उसमें जल डालता हूँ और अपने स्नेह की दृष्टि से और परोपकार की दृष्टि की मैं खाद डालता हूँ और सबके अनेक जन्मों की भविष्य की मैं कमाई कराता हूँ। मैं वो किसान हूँ क्योंकि इसके ये आप मेरे से सौदा करेंगे। आप मुझे किसान के नाते क्या देंगे? गेहूं चावल जो आपने बोया है वो मुझे देंगे और मैं वो किसान हूँ जो मैं आपको ज्ञान का बीज देकर मैं एकदम भरपूर कर दूंगा, संपन्न बना दूंगा। तो किसान को बहुत मजा आया, इसकी बात सुनने में बहुत खुश हुआ। तो वो भिखारी, वो किसान ज्ञानवान कौन था? वो बुद्ध थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तब बुद्ध ने उनको ज्ञान का बोध कराया और उस किसान ने उसके बदले में उनको खाने के लिए अनाज दिया। आप भी विचार करो कि हम सब भी किसान हैं, हम भी अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज क्या कर रही है, बो रही है, अपने भाग्य का बीज हम इसी संगम पर क्या कर रही है, बो रही है। और समय पर अगर हम बीज बोते हैं तो एक गेहूं का बीज बोते हैं तो कितना बोते हैं? इतना बोते हैं ना, और उसमें एक में देखो कितनी बालियां होती है, कितने गेहूं निकल आते हैं, बहुत निकलते हैं ना। ऐसे ही बाबा ने मुझे संगम युग का महत्व तो बताया कि अगर आप एक बोएंगे तो एक का कितना पाएंगे और हर एक में एक का एक गुना, लेकिन संगम पर एक का पदम गुना। तुम पद्मों का भाग्य क्या कर रही है, बना रही है। इस पर भी मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है कि समय वही है। लेकिन हम देखते हैं ब्राह्मण बच्चे वो भी क्या करते हैं, कल पर छोड़ देते हैं, लेकिन कल वो आते ही नहीं है। इसलिए यहां से जाने के बाद और अभी नया वर्ष भी आने वाला है, नया युग तो आने ही वाला है, लेकिन नया वर्ष भी आने वाला है। कुछ मन में ऐसी प्लानिंग करके तब इस, कौन सी धरनी है ये, मधुबन धरनी कौन सी है? बहुत प्योर धरनी है जहाँ स्वयं कौन आते हैं, ये वरदानों की धरनी है। इसी को बाबा क्या कहते हैं, वो धरनी तो है ही है, लेकिन ये तीर्थ है जहाँ स्वयं कौन आते हैं, किसे मिलन मनाते हैं। सबके मन में है कि हम किससे मिलन मनाने आए हैं? हम उससे मिलन मनाने आए हैं। उससे मिलन मनाने के लिए अभी यहां से ही तैयारी क्या कर दो, अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। उस पर भी हमें कहानी याद आ रही है, शायद आप लोगों ने सुनी है या नहीं। कहानी बड़ी सारगर्भित होती है और बच्चों का इंटरेस्ट भी किसमें होता है। कुछ टीचर जो है ना खेल खेल में टॉपिक पढ़ा देते हैं बच्चों को, कहानियों में भी बच्चों को सिखा देते हैं और बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। तो बीच में ये कहानियां हमें कुछ शिक्षा दे के ही जाते हैं, अगर हम उसे सीखना चाहे। उसके लिए एक राजा थे, वो भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे, बड़े न्यायप्रिय थे, प्रजा के भी प्रिय थे, बहुत ही ग्रेट थे, बड़े तपस्वी थे और उन्होंने साधना करके भगवान को राजी कर लिया। और भगवान जब राजी हो गए, दर्शन दिए, तो भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें एक वरदान मेरे से मांग लो। तो राजा प्रजा को बहुत चाहते थे, अपने लिए उन्होंने नहीं कुछ मांगा, कहा भगवान मेरी एक ही आस है कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दीजिए, तो मेरा जो साधना है, मेरी जो तपस्या है और मेरा जो कुछ भी है सब सार्थक हो जाएगा। भगवान ने बहुत मना किया कि आज का कोई भी व्यक्ति भगवान से मिलना नहीं चाहता है, किससे मिलना चाहते हैं, किससे? माया से, धन दौलत संपदा, आंखें खुलती है तो भी। अभी 500,000 के नोट बंद हुई, आंखें खुली, बंद हुई तो किस पे नजर जाती है? उसी पे ही जाती है ना। तो भगवान ने बहुत समझाया, राजा जी कुछ और वरदान मांग लो, मेरे से किसी की मिलने की कोई आस्था नहीं है, आप मिल लिए यही बहुत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान, मेरी प्रजा से भी आप मिल लेंगे तो उनका जीवन सार्थक सफल हो जाएगा, इसलिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैंने एक वरदान तो दिया, इसने मांगा है तो क्या बुरा किया है, ठीक है, मैं आपकी सारी प्रजा से क्या करूंगा, मिलूंगा। और भगवान ने समय दे दिया, इतने बजे इस पहाड़ी पर मैं तुमसे क्या करूंगा, मिलूंगा। राजा जी जब पहुंचे तो उन्होंने पूरे में ऐलान कर दिया, अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि कल इस टाइम पर इस पहाड़ी पर भगवान जो है ना वो सबसे क्या करेंगे, मिलेंगे। सारी प्रजा भी बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये प्रभु मिलन कम नहीं है, ये जो आप लोग प्रभु से मिलन मनाने आए हो, हम लोगों को अनुभव है अपने जीवन काल का, बहुत कुछ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम हनुमान तो बन जाएं, सब कुछ बाबा दे देता है। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो भगवान से मिलना होगा, सब तैयार हो गए, राजा आगे आगे, रानी आगे आगे और प्रजा पीछे पीछे चल दी। आगे बढ़े पहाड़ी पर तो एक तांबे का पहाड़ दिखाई दिया, प्रजा को क्या चाहिए, वो एकदम भगी थोड़ी सी प्रजा कि तांबे का पहाड़ है, तांबा बटोर लो, अभी तो तांबा मिल रहा है, तांबा तो बड़ा महंगा मिल जाए, बिक जाएगा। राजा ने बहुत समझाया कि भगवान से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, ये मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन प्रजा ने एक नहीं सुनी और उसी में लग गई, आगे बढ़े तो प्रजा और भी थी, राजा और आगे बढ़े, अंदर अफसोस भी हो रहा था कि कहां भगवान कहां ये तांबा, लेकिन क्या किया जाए, माया। आगे बढ़े तो चांदी का पहाड़ दिखाई दिया, प्रजा कहां भागी, कुछ प्रजा चांदी के पहाड़ की तरफ, चमक रहा था चांदी एकदम चमचम चमचम, आकर्षित हुई आत्मा, भागी उसकी तरफ, बटोरने में लग गई। राजा के बहुत कहने में कहते भगवान तो फिर भी मिल जाएगा, पर ये चांदी नहीं मिलेगी। कितने भी रोकने पे नहीं रुके, कुछ प्रजा साथ थी, फिर आगे बढ़े। आगे सोने का पहाड़ था, सोना भी खूब अच्छा चमक रहा था, आकर्षित कर रहा था। सारी प्रजा किधर भाग गई, सोने की तरफ, सोना बटोरने में लग गई। राजा के बहुत समझाने में कोई प्रजा एक भी नहीं रुकी। अब राजा रानी दोनों ही आगे बढ़ रही है। राजा कहते जा रहे, देखो मनुष्य किसमें लगा पड़ा है, भगवान मिलने के लिए आ गया और ये मूर्ख आत्माएं, इनको भौतिकता की आकर्षण इतनी है कि भगवान भी समझ में नहीं आ रहा है। रानी भी हाँ हाँ कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोनों। शांति। तो अभी हम हमारे और राजा आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ रहे थे तो देखा सोने का पहाड़। रानी भी राजा का साथ छोड़ करके हीरे की तरफ आकर्षित हो गई और वो भी हीरा बटोरने में क्या हो गई, लग गई। राजा ने कहा, अभी भी रानी मैंने समझाया कि ये सब भौतिक चीजें नगण्य हैं, भगवान से मिलन उससे प्राप्ति, उससे बढ़कर संसार की कोई भी चीज नहीं है। लेकिन रानी ने एक भी नहीं सुनी। राजा अकेले पहुंचे, भगवान पहाड़ के ऊपर खड़े इंतजार कर रहे थे। राजा की आंखें शर्म से झुकी हुई थी कि मैंने क्या सोचा था और आज मैं अकेला ही भगवान से मिलने के लिए पहुंचा हूं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी सारी प्रजा कहाँ है? कुछ जवाब नहीं था। तो भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य है, ये भौतिक चाहना, सांसारिक इच्छाएं रखने वाले, ये ना तो मेरे को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही इन आत्माओं को मेरे द्वारा कुछ प्राप्ति होती है। ये मेरे स्नेह से भी और मेरे आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। तो सोचो कितनी कोटों में जो बाबा ने गायन किया है, कोई आत्मा, विशेष आत्मा आज सब बैठी है, बैठे है ना? कि आप सांसारिक चीजों को आपको छोड़ना पड़ा होगा, 4 दिन 8 दिन 10 दिन, और यहाँ के तो सब कुछ भूल जाता है। सबके मन में, दिल में कौन है? और बोलो, मेरा बाबा। मेरा बाबा ही सिम सिम खुल जा, जैसे वो कहते थे खजाना खुल जाता था, खुल जाता था ना, कहानियां सुनी है ना। अगर हमें भी अपने भाग्य का संपूर्ण खजाना खोलना है तो सिर्फ बाबा क्या कहता, क्या कहो? दिल से कहो मेरा बाबा, दिमाग से नहीं। अगर मेरा बाबा कहा तो संपूर्ण भाग्य के खजाने, पुत्र भव, संपत्तिवान भव, सुखवान भव, जितने भी है सारे खजाने क्या हो जाने हैं? खुल जाने हैं। मुश्किल है खजाने खोलने की चाबी? कठिन है? फिर बाबा कहते, बच्चे नंबर वार क्यों? फिर नंबर वार क्यों? क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं, वो दिलाराम बाबा, उसको सिर्फ क्या चाहिए? दिल चाहिए। हम दिमाग लगा देते हैं, दिमाग का सौदा नहीं करता है, वो दिल का सौदा करता है। अभी हम देखे बाबा से कौन सा सौदा कर रही है। अगर है, अभी सारे भाग्य का खजाना हमारे लिए खुला हुआ है, जो संसार में लोगों के पास नहीं है आज वो किसके पास है? सब बोलो, किसके पास है? मेरे पास है कि नहीं है? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, सब किसके पास है? मेरे पास है। और वो खजाने से मेरा बाबा कहने से ही प्राप्त हो गए। और खुशी का खजाना, कौन कौन खुश रहते हैं? हाथ सब उठा देते हैं, अच्छी बात है ना। अभी खुश होके दिखाओ। सब खुश। भाग्य है तो खुशी है, लड़की ब्याह के आती है, देखो पैसे वाले घर में आ गई, सब कुछ है, प्यार सबका मिल रहा है, उसका चेहरा खिला है, खुश है, चेहरे से पता लग जाता है ना कि बड़ी भाग्यशाली है। अगर हम लोगों के भी चेहरे खुश है तो हम भी क्या समझे, खुद को भी समझे, लोग भी हमें समझेंगे बड़ी भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि मुझे खुद का भी भाग्य बना करके बाबा ने कहा खुद का ही नहीं बनाना है, औरों का क्या करना है, औरों का भाग्य बनाना भी मेरे भाग्य में ऐड हो गया, इतना भी करने से बाबा का पाई पाई बाबा क्या करेगा, चुका देगा। इसलिए अगर कुछ भी करते हो बाबा के घर तो ये नहीं सोचो आपका वेस्ट गया, बेस्ट बन गया। वैसे दुनिया में करते तो क्या होता, बेस्ट खाते में। आज सारी जिंदगी अपने बाल बच्चे परिवार में लगाते हैं ना, तो कहते हैं क्या किया माँ बाप, माँ बाप को बुढ़ापे में भी कहते क्या किया, फर्ज निभाया ना। भगवान के घर किया, पिता के घर किया, पिता कहता वाह बच्चे वाह कमाल किया, तुमने तो अपना भाग्य क्या किया, जमा कर लिया। तो समझदार अभी कौन, ऐसा नहीं कि घर परिवार में नहीं करना है, वहां तो करना ही है, लेकिन अब बाबा के बच्चों में क्या है, समझदारी आ गई है कि भी बाबा क्या कहता है, वो भी हमारा परम पिता है, हमें उसके घर करके क्या करना है, अपना अनेक जन्मों का भाग्य क्या करना है, जमा कर लेना है। तो तीन चीजें ब्रह्मा बाबा ने क्या लगाया, जो अपना ऐसा भाग्य जमा किया कि श्री कृष्ण का पद पा लिया। आज अंगुली में तीन पोर होती है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या सफल किया, तन मन धन, सुनते हैं ना सब, तन भी संपूर्ण बाबा के यज्ञ में सफल किया, मन मना भव तो हमेशा ही रहा, और संपूर्ण धन भी सेवा में लगा दिया। और मम्मा को क्या कहते, मम्मा तो गरीब थी लेकिन मम्मा भी विश्व की महारानी बन गई, उसने ऐसा क्या किया जो इतना ऊंचा भाग्य अपना बना लिया, उसने भी तीन काम किए, मनसा वाचा कर्मणा। धन नहीं था फिर भी वो क्या बन गई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बन गई। इतना ऊंचा मम्मा ने, हमारी माँ ने भाग्य बना लिया मनसा से। हमेशा हमारी मनसा हर एक के प्रति अगर नहीं है तो अभी भी कर लेना, अभी कंप्यूटर में फिट कर लेना, आत्मा ऐसे कंप्यूटर उसे फिट कर दो कि मुझे हर आत्मा के प्रति 100% शुभ भावना शुभ कामना, इतना परसेंट भी अगर कम है तो वो शुभ भावना के अंदर में नहीं आएगा। हर एक का कल्याण हो, हर एक का शुभ हो, हर सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारे अंदर में मनसा बन जाए और वाणी भी। जब मनसा, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना मन से ही होता है, फिर मुख से निकलता है, तो मन जब 100% प्योर, क्योंकि मैं एवर प्योर परमात्मा की संतान हूं, साधारण की संतान नहीं हूं, तो मैं कैसे इतना भी इम्प्योर हो सकती हूं। ये सब चीजें हमारे भाग्य में ऐड हो रही है, ये मुझे पता नहीं होता है कि कैसे, कहीं से इधर से नंबर अच्छे, कहीं इधर से एक मार्क्स दो मार्क्स, आजकल के जो पेपर होते ना ऐसे ही होते हैं ना, रीजनिंग पेपर क्या क्या पेपर, उसमें दो नंबर के आते हैं, अगर आप सही करेंगे तो फुल मार्क्स, नहीं तो क्या हो जाते सब नंबर, तो ऐसे ही जो हमारे नंबर भाग्य में ऐड हो रहे हैं, अगर इतनी भी मनसा में इम्प्योरिटी है, शुद्ध संकल्प है, तो हमारे नंबर क्या हो रही है? माता समझ रही हो? नंबर हमारे कम हो रही है। भाग्य तो बहुत बड़ा पाना चाहते हैं, एक दो को देख के ईर्षा भी करते हैं, करते हैं ना, जेठानी इतनी माला माले तो देवरानी गरीब क्यों, उसका पति है वो सुहागवती तो मैं ऐसी दुर्भाग्यवती क्यों, इसके लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन उसने ऐसा भाग्य कैसे बनाया और मैं भी अगर ऐसा भाग्य बनाऊं तो मेरे अंदर की जो ये फीलिंग है ईर्षा देश की, सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए ना। लेकिन इन पर ध्यान हमारा नहीं जाता है, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को किस पर अटेंशन जाना चाहिए? सब स्टूडेंट है या गृहस्थी है? कौन है जो गृहस्थी, वो हाथ खड़ा करो, स्टूडेंट वाले नहीं, जो गृहस्थी वो हाथ खड़ा करो। गृहस्थी कितने है? सब गृहस्थी है, समझते नहीं है, टीचर बहने ले आती है। अच्छा, गृहस्थी, गृहस्थी माना गिरी स्थिति, डाउन है जिसकी स्थिति। स्टूडेंट कैसे होते हैं? कैसे होते, उनको फिकर होती है कोई बात की? माँ बाप बैठे हैं ना, फिकर काहे की, हमारे माता पिता बैठे हैं ना, हम स्टूडेंट है, हमारा टारगेट वहां तक पहुंचना है, हमारी पढ़ाई है और हमें टॉप ऑफ टॉप बनना है। इसके लिए ये शुभ भावना शुभ कामना भी हमारे नंबर को क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है। इस पर हमें सब बातों पे ध्यान दे करके अपनी तकदीर जब बना के पहुंचूंगी ना, तब लगेगा वाह, अपने ऊपर नाज होगा। आज भगवान आत्मय जो बैठी है ना इस कलयुग में लौकिक दुनिया में, वो भी अपने पर क्या करती है, नाच करती है ना। तो हम भी क्या करेंगे, अपने भाग्य पर संगम पर ही नाच करेंगे, वाला नहीं, अशुद्ध नाच नहीं, प्योर नाच। तो एक एक बात पर हमारे नंबर क्या हो रहे हैं, जुड़ रही है माइनस मार्किंग। अगर जरा से कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे नंबर कट होते जा रही है, हमें लगेगा हमने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, दोपहर तक किया, लेकिन शाम को कुछ गड़बड़ हो गई, मार्किंग क्या हो गई, जो हमारे 10 नंबर थे दोपहर तक, और अगर मैंने देह भान में आकर कुछ निगेटिव कुछ कर लिया, अशुद्ध कुछ कर लिया, व्यर्थ कुछ कर लिया, तो हमारे नंबर क्या हो गए स्टूडेंटों के, खत्म। फिर पुरुषार्थ लगो, फिर लगता कहां तक करे, बने ना बने भाग्य, फिर क्या कहते हैं, छोड़ दो, कहां तक करे, कहां तक भाग्य बनाए, हमसे नहीं होगा। कई बच्चे पुरुषार्थहीन होते हैं ना, वो क्या कह देते हैं, हमसे नहीं होगा, कि कोई कोई ड्रामा पे ले आते हैं, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, भगवान बुलाएगा तो मधुबन आ जाएंगे, भगवान बुलाएगा तो सेंटर पर आ जाएंगे, किस पे छोड़ देते हैं, खुद पे नहीं छोड़ते हैं, किस पे छोड़ देते हैं। जितने भी गलत काम हो रहे हैं सब भगवान कर रहा है, अच्छे काम जो हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, अच्छे काम सारे हम करते हैं, गलत काम हो गया किसने किया, भगवान ने किया। मंदिर में जाएंगे, घंटा बजाएंगे और भगवान से क्या मांगेंगे, धन दे दो, संपत्ति दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यही मांगते हैं ना। सेठ जी एक थे तो यही मांग रहे थे मंदिर में, साधु जी खड़े खड़े देख रहे थे कि सेठ जी मांग क्या रहे हैं भगवान के आगे। सेठ जी को महात्मा जी ने कहा तुम तो बहुत अशांत दिख रहे हो, महात्मा जी ने कहा तो सेठ जी बोले बिल्कुल हम बहुत अशांत हैं। तो महात्मा जी ने कहा अगर तुम ये सब ना मांग के भगवान से शांति मांगते होते तो आज तुमको क्या मिलता होता? मन की शांति मांगते तो शायद मन शांत होता, लेकिन तुम ऐसी चीजें मांग रहे हो जिससे मन कभी शांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इच्छा क्या करती है, इच्छा तो आगे बढ़ती जाती है, इच्छा तृष्णा ये कभी खत्म नहीं होती है। तो अभी हमको जो इच्छा रखनी है अच्छा बनने की, मैं कैसे यूनिक बन जाऊं, कैसे मैं अच्छा बन जाऊं, चाहेंगे ना। ज्ञान बाबा का बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छी है, ये तो दुनिया वाले भी कह रही है, पर हम अच्छे बने ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हम अच्छे बने, क्योंकि हमको देखकर संसार बदल जाएगा, हमको बदलने की भी मेहनत नहीं करने पड़ेगी। अभी समय थोड़ा है और क्या करना है, पढ़ाई बहुत पड़ी है, भाग्य बहुत ऊंचा बनाना है, ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने कैसे दिखनी चाहिए? जैसे स्पष्ट चीजें दिखती है, स्थूल चीजें कैसी दिखती है? एकदम स्पष्ट दिखती है। ऐसी सूक्ष्म चीजें भी, इनकी भी देखने की आदत डालो। ये सूक्ष्म दृष्टि से, ये मन के तीसरे नेत्र से क्या करती है, दिखती है। इनको जब देखने की आदत डाल लेंगे हम बाबा के बच्चे, तो ना जाने कितनी हम बच्चे अपनी कमाई कर सकेंगे, और जितनी अधिक कमाई उतना क्या होगा, खुशी। अगर खुशी है तो कमाई है। तो हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, अपने ही ऊपर क्वेश्चन पुट अप करो। जो हम कर रहे हैं क्या इससे मेरा भाग्य बन सकता है? जो वर्तमान हम कर रही है, बहने भी समझ रही होंगी, जो आज हम कर रही है इससे क्या मेरा भाग्य बन रहा है, या कुछ और करना चाहिए, या बाबा जो कह रहा है वही मुझे करना है? बताओ क्या करें? जो बाबा कह रहा है इस समय हमें वही करना है, और सब आवाजें सुनना का वॉल्यूम क्या कर दो, वॉल्यूम धीमे कर दो, और बाबा का जो सुनाने का वॉल्यूम है उसको क्या कर दो, तेज कर दो। और कुछ भी सुनना ही नहीं देता है, जिससे हमारी तकदीर मिट रही है वो बातें हमको सुनाई नहीं देती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, और जो बाबा सुना रहा है जिससे हमारी तकदीर ऊंची बन रही है, वो वॉल्यूम तेज है, वो हमें सुनाई दे रहा है, वो मुझे दिख भी रहा है, उसका वॉल्यूम क्या करो, तेज करो। और आगे के लिए प्लान करो अपने लिए, जैसे चार्ट बाबा बोलते हैं ना, ये तकदीर बनाने के लिए तो सारी बातें होती है, भाग्य बनाने की सारी बात है, क्योंकि स्टूडेंट है तो भाग्य तो बना नहीं है, बन भी रहा है लेकिन ऊंचा भाग्य बाबा कहता है, क्योंकि भाग्यवान के बच्चे हैं ना, बच्चे भी किसके हैं, भाग्यवान के बच्चे हैं तो निश्चित है कि भाग्य है उसमें। अगर जितना योग करेंगे, जितना ज्ञान को समझेंगे, उतना ब्राइटनेस आएगी भाग्य में, वो चमक फिर औरों को दिखेगी। अभी मेरा भाग्य बन रहा है पर लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि वो चमक अभी नहीं ला रहे हैं, वो ब्राइटनेस नहीं है। जितना जितना हम स्वचिंतन करते जाएंगे, जितना जितना बाबा के ज्ञान से अपने विवेक को जागृत करते जाएंगे, उतना उतना हमारे भाग्य का सितारा क्या होता जाएगा, चमकता जाएगा। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, मेरे उम्मीद के सितारे, मेरे भाग्य के सितारे। भाग्य कहाँ से देखा जाता है? या तो हाथ की लकीर से या मस्तक से, दो चीजों से ही देखते हैं ना भाग्य। तो हमारी आत्मा की जो मणि है, जितना जितना ये चार सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट होती जाएगी, उतनी ये मणि क्या होती जाएगी, चमकती जाएगी। अभी धूमिल थोड़ी थोड़ी हो गई है, अभी इसमें चमक लानी है, और जैसे ही चमकेगी मणि, चमकती ना, तो लोगों का अट्रैक्शन किस पे जाता है? मणि पे जाता है। हम ज्ञान सुनाते हैं लेकिन हमारे में चमक नहीं है, हमारे में वो फोर्स नहीं है, हम अथॉरिटी अभी नहीं हासिल कर पाए हैं, तो वो चमक नहीं दिखती, तो कहते भाई ये ज्ञान आप ही अपने पास रखो। कई ऐसे बोल देते हैं ना, बहन जी ये ज्ञान आप ही अपने पास रखो, मुझे तो आपसे कुछ दिखता नहीं है। मीन्स दिखता नहीं, मीन्स चमक दिखती नहीं है। तो ऐसी जो हमारी चमक होनी चाहिए बाबा के घर से जाने के बाद, अभी सब हमें वही करना है। अभी अच्छी अच्छी क्लासेस दादियों की, दीदियों की, वरिष्ठ बहनों की आपको मिलेंगी। यहां से जाने के बाद एक सैंपल बन के जाओ, जैसे पहले जो घर में बेचने वाले आते ना, एक सैंपल ले लेके आते, ये सर का सैंपल, ये इसका सैंपल, यूनिक होते हैं। ऐसे हम भी एक दृढ़ संकल्प करें कि मैं यहां से कैसे बंद करके जाना है, जाऊंगा या जाऊंगी, कैसे बन के जाएंगे संसार के लिए, हम एक सैंपल बन के जाएंगे, उदाहरण मूर्त बन के जाएंगे। सब मुझे देखें और देख के सौदा पसंद कर लें। भगवान किसके द्वारा दिखेगा? भाग्य किसके द्वारा वो दिखाएगा? मेरे ही द्वारा दिखेगा ना सब कुछ। मेरे को देख करके ही वो क्या करे, वो सौदा पसंद कर ले। मुझे भगवान को नहीं, आपको ही देख के मैं सौदा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने यूनिक हो, आप में इतनी ब्राइटनेस है, वो रूहानियत है, वो स्पिरिचुअलिटी है। मुझे, हमने आपको ही देख के भगवान को देख लिया। ऐसा हम बाबा के कमरे में जाकर दृढ़ता से दृढ़ संकल्प करें कि बाबा मुझे ऐसा बनना है, चिट्ठी लिख के जाए, मेरा बोल, मेरा सोच, मेरे हर कर्म, मेरी चलन, जो भी कुछ हो, लोगों को प्रेरणा दे। मैं चलूं तो कारवा का कारवा चल दे। ऐसा, क्योंकि जैसा सोचते हैं ना, अभी संगम युग सारा खेल किस पे चल रहा है? सोच किया, सृष्टि बदल दी। ब्रह्मा ने क्या किया? संकल्प किया तो सृष्टि क्या हो गई? बदल गई। सब शास्त्रों का सुना हुआ है। तो ब्रह्मा ने संकल्प किया तो ब्रह्मा के बच्चों ने भी क्या किया? बच्चों ने भी संकल्प किया कि मैं तो बदली गया हूं, मुझे भी पूरी सृष्टि को क्या करना है? बदलना है, अपने श्रेष्ठ पावरफुल थॉट से। तो जितना भी व्यर्थ है मन में, उसको आज से योग अग्नि से क्या करो, व्यर्थ आने ही नहीं दो। ये हमारे भाग्य को लकीर क्या करता रहेगा, लगाता रहेगा। जैसे आए फुल स्टॉप, बिंदी लगाना सहज है ना, आया फुल स्टॉप, बिंदी लगाया, छुट्टी किया, ड्रामा कल पहले हुआ था, बात खत्म, अभी बाबा ने क्या कहा है, केयरफुल पढ़ाई पर क्या हो, केयरफुल तो चेयरफुल। अब स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके चेहरे पे खुशी दिखेगी क्या, झलक दिखेगी? खुशी नहीं है, ज्ञान में चल रही है, चेहरे में खुशी नहीं है, रंगत नहीं है, तो हमारा ज्ञान कहाँ है? इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति हमें बहुत ध्यान रखना है और अनेक जन्मों का भाग्य बनाना है तो भगवान को साथ रखना है। उसको कभी एक सेकंड भी जुदा नहीं करना है। बाबा सदा हमारे क्या है, सदा साथ है। चलो बाबा, अगर घर से भी जा रहे हो तो पहले किसे छुट्टी लो? घर में कौन बैठा है, बड़ा बूढ़ा कौन बैठा है? छुट्टी लेके जाते हैं कौन? एक मत, दो मत। बाबा का कमरा बनाया है, घरों में बाबा का कमरा बनाया है? बनाया है, बस खुशी की बात है। नहीं बनाया तो बना लेना। तो बाबा से कहीं भी जाओ पहले किससे छुट्टी लो, बाबा मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, आपसे छुट्टी ले रहा हूँ, चलो बाबा आप भी साथ चलो। तो जब हर काम में छुट्टी लेंगे, भोजन भी बाबा बना रहा है, खा भी रहा है, काम भी कर रहा है, बाबा साथ कर रहा है, जो भी काम करें पहले बाबा से छुट्टी लेकर के ही करना है। जिसे बहुत प्यार होता है ना उसे, तो देखो कैसे कैसे क्या क्या करते रहते हैं। तो अगर बाबा से भी प्यार होगा तो साथ लेके जाएंगे ना बाबा को, तो अकेले होंगे क्या? तो कदम कदम पर बाबा मुझे गाइड करता रहेगा। समझ में आ रहा है? जहां बाबा की गाइडेंस है, बाबा मुझे गाइड कर रहा है, वहां मेरे कर्म कैसे होंगे? कर्म और भाग्य। कर्म का बीज बो दिया, जैसा भी वैसा भाग्य पा लिया। तो बाबा अगर साथ है, साथ ही साथ है, तो हमसे कोई कर्म जो है ना वो खराब हो नहीं सकता है। बाबा को भूले तो माया आई, और माया आई तो उसने विकर्म कराया, विकर्म कराया तो दुखी हुए। इसलिए क्यों हम बाबा को भूलें? अभी तो इतना सहज हो गया है, बिजनेसमैन दुकान में बैठे हैं, आराम से बाबा की याद की कमेंट्री लगाई, अगर ग्राहक आया तो काम किया, नहीं तो क्या किया, मस्त हो गए। ऑफिस में बैठे हैं, काम है तो वर्क किया, व्यर्थ नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना शुरू किया, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो किसके साथ है? निगेटिविटी वाले के साथ है ही नहीं, उसके साथ है। एक एक कदम अगर हम चलते हैं तो किसके साथ चलते हैं? तो हमारा कुछ भी अहित हो ही नहीं सकता है। तो ये वही समय पर अटेंशन, संगम का समय। हम संगम युगवासी, हम कलयुगवासी नहीं है, हम नरकवासी नहीं है, कहां से निकल आई है? संगम पर आ गए हैं और हमारा मुख किधर हो गया है? अपने लक्ष्य की तरफ और अपने वो स्वर्णिम दुनिया की तरफ, हमारा उधर है ही नहीं। तो क्यों हम उन सब को लेकर व्यर्थ में अपना समय क्या कर दे, गवा दे? कई बहने आश्रम पर आती, कई भाई आते हैं ना, मेरे साथ घर वाले ऐसे चलते, ऐसे करते, ये होता, मैं भी उनके साथ वैसा करता, तो अभी कहाँ बैठे हो, संगम पर या नरक में? कहाँ बैठे हैं? संगम पर अगर बैठे हैं, लोगों का हम जीवन बना रहे हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम शुभ भावना कंटिन्यू रख रहे हैं तो वो भी सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो अपने सम्मान में रहो कि मुझ जैसी पीसफुल सोल, मुझ जैसी पावरफुल सोल संसार में भी, ढूंढने पे भी, किसी कोने में भी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे जब जितना हम कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जितना सिर्फ विचारों से व्यक्ति महान बन जाता है, सोच से क्या बन सकता है, धन से महान नहीं बन सकता है। अपनी सोच से बड़ी बड़ी हमने कहानियां पढ़ी होंगी, उन्होंने अपनी सोच से क्या बन गए। तो सिर्फ अगर अपने को ऊंचा बनाना है तो क्या करना, क्या बदल देना है, सोच से इतनी दूरी है ना। सिर्फ अपने विचारों को, सोच को क्या कर दो, बदल दो। जैसे ही बदल देंगे वैसे ही आपकी जीवन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, संसार बदल जाएगा। आप भाग्यवान बन जाएंगे, संसार को भी क्या बना देंगे, उनको भी भाग्यवान बना देंगे, उनको भी भगवान का बच्चा क्या करेंगे, बना देंगे, वो भी अविनाशी भाग्य क्या करेंगे, अनेक जन्मों का बना लेंगे। तो कभी कभी ये भी सम्मान ले लिया करो कि मैं भगवान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैंने कईयों को देखा क्या सोचते हैं, अरे मैं कहाँ भाग्यवान हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता है, मेरे तो घर वाले भी मुझे नहीं पसंद करते हैं, मुझे गाली देते रहते, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसी। जब खुद हमने कहा ना मैं हूँ ही ऐसी, तो कैसी हो गई, कैसी हो गई, अपनी सोच से वैसी हो गई। औरों को तो, औरों ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, आप कैसी हैं, लेकिन हम खुद को ही अपना ऐसे वैसे कैसे बोलते रहते हैं। अभी क्या करना है, चेंज, चेक और चेंज। क्या करो, अपने को चेक करो, क्या बाबा सोच रहा मेरे लिए और मैं अपने को क्या सोचती हूँ, चेक करो। क्या मुझे अपनी आत्मा को भोजन देना है? बड़े बड़े जो होते हैं ना ऑफिसर, उनका भोजन क्या होता है, गवर्नर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, भोजन देंगे डायरेक्ट खाने को, चेक करते हैं कहीं पॉइजन तो नहीं मिला हुआ है। हम तो गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर से भी ऊंचे हैं ना, अरे ताड़ी तो बचा दो खुशी में। उससे भी ऊंचे हैं। तो स्वयं हम अपने आत्मा को क्या भोजन दे रहे हैं, पहले क्या करें, चेक, जो दे रहे हैं राइट, ये मेरी आत्मा को पावरफुल बना सकता है ये भोजन, उसके लिए मुझे क्या भोजन देना है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे ऐसे ये आत्मा को क्या देना है। मैं ही वो आत्मा हूँ कि मेरे द्वारा ही सारा विश्व बदलेगा, ये भोजन आत्मा को क्या करना है, देना है। इससे आत्मा को बल मिलता है, ताकत मिलती है, जो ताकत का भोजन दिया ना, कमजोर भोजन तो नहीं दिया, बासी तो नहीं दिया, उल्टा सुल्टा तो नहीं दिया ना, शक्तिशाली आत्मा को भोजन दिया तो आत्मा कैसी हो गई, शक्तिशाली, तो चेंज हो गए ना। तो पहले जो हम दे रहे हैं अपने भोजन, मन को, आत्मा को, बुद्धि को, तो पहले तो चेक करो, ये पॉइजन तो नहीं है जो अंदर ही अंदर हमारे भाग्य को क्या करता रहे, लकीर लगाता रहे। क्योंकि माया कभी भी हमारे भाग्य को बनने नहीं देगी, ये गांठ बांध दीजिए। माया महा ठगिन हम चने, समझ गए इसकी नॉलेज को, वो कभी मेरा भाग्य बनने नहीं देगी। और भगवान मेरा भाग्य बनाने ही आया है, अभी डिसाइड करना है क्या करना है, क्या करना है, सबको बनाना है, सबको ही बनाना आई, इसीलिए हम कह दो बाबा के घर आई किस लिए है, इसीलिए आए हैं ना। तो मुझे अपना भाग्य बनाना है, इसलिए आत्मा को शक्तिशाली समर्थ पावरफुल थॉट्स ही देने हैं, ठीक है ना। तो टेंशन टेंशन को टाटा बाय बाय करेंगे, किसको किसको टेंशन रहता है। अरे भाग्यशाली भगवान भाग्य बनाने आया है, मेरा इतना ऊंचा भाग्य बन रहा तो भी मैं कहूँ टेंशन में हूँ डिप्रेशन में हूँ, यही छोड़ के चले जाना, क्या छोड़ के चले जाना। टेंशन डिप्रेशन यही छोड़ जाना, बाबा ले लो मुझे नहीं चाहिए, बहुत दवाई खा ली, बहुत पैसा वेस्ट कर दिया, अभी तो मेरे जैसा भाग्य मेरी जैसी तकदीरवान आत्मा, मैं इतनी ग्रेट आत्मा, मैं वो आत्मा हूँ, ये टेंशन डिप्रेशन बाबा आप ले लो दे के जाना, फिर कोई घर में नहीं कहना मुझे टेंशन है, वह माया आपका पेपर लेगी। लेगी ना पेपर, खुश रहना, खुशी हमारी ओन प्रॉपर्टी है, भगवान आत्मा की क्या है ये प्रॉपर्टी है। आज कोई चोर बदमाश लूटने आते हैं, हम अपनी जान तक दे देते हैं, उसको प्रॉपर्टी छीनने नहीं देते। कईयों को देखा ना, डाके आए डालने के लिए, मर गया पर प्रॉपर्टी जाने नहीं दे। और हमारी खुशी, जरा सी बात में लोग हमारी खुशी क्या करते हैं। कई माताएं आती है रोई रोई मरी मरी आती है आश्रम पर, हम कहते हैं क्यों ऐसी आई हो आज, मेरी सास ने ना ऐसा बोल दिया। इतनी सी बात में क्या हो गई, गायब। ओन मेरी प्रॉपर्टी खुशी, और मैंने इतनी सी बात में क्या की, गायब कर दी। क्या हम गैस का गुब्बारा है, हवा निकाली तो क्या हो गई, हवा निकल गई, नहीं। हमारी अपनी ये बाबा ने संगम युग पर हमें क्या दी है, ये संपत्ति दी है, हमारी सांस है, और सांस ही चली गई तो जीवन कहाँ है। तो ये जो सांस है हमारी, इसको किसी भी कीमत पे छीनने नहीं देना, हर हाल पे कैसे रहना, हमको खुशहाल रहना है। और सुबह सुबह समान में ले आओ, 11 बार उठो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, 11 बार अमृत वेले उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा। आप 11 बार समान क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद, मैं कौन सी आत्मा हूँ। नाचो थोड़ी देर, कोई कमरे में नाचो, मन का भी नाच स्थूल डांस भी करो, नींद गायब हो जाएगी। मैं खुश नसीब आत्मा, मेरे जैसा खुश नसीब संसार में कोई नहीं, फिर माया भी देख रही है, भी तुम्हारी बताती खुश नसीबी। फिर कारोबार में आएंगे तो क्या होगा, वो खुशी छीनेगी आपकी, हमारी सबकी प्रॉपर्टी को क्या करेगी, छीन तो ले गई, अभी जो मिला है बाबा के द्वारा वो भी नहीं रखने दे रही है। इसलिए इन सब के लिए चिंतन का ये विषय है, इसके लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालो। जैसे मुरली आपने पूरी सुन ली पढ़ ली, अभी आपका भोजन नहीं हुआ, जिस समय मुरली का आपने चिंतन किया, जो अच्छी पॉइंट लगे ना उस पर टिक मार लिया करो। मुरली में बहुत सारी पॉइंट है, आपको दो पॉइंट अच्छी लग रही ना, आप उस पर टिक मार दीजिए, इम्पोर्टेंट मीन्स ये हमारे जीवन में इसको आत्मसात करना है, इसमें मैंने टिक लगाया है, इसके लिए चिंतन करना है। और जिस समय आपने इसको आत्मसात कर लिया, ये आपका भोजन बन गया, ये ओन आपकी क्या बन गई, संपत्ति। तो जितना जितना मेहनत कर लेंगे वो आपकी निजी संपत्ति क्या होती जाएगी, बनती चली जाएगी, उतना मजा आएगा। अपनी संपत्ति में क्या होता है, जोर होता है ना, पराई की संपत्ति में जोर नहीं होता है। तो अपने एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें कौन सा समय अच्छा मिलेगा अपने उत्थान के लिए, आत्म उत्थान। अरे भौतिक उत्थान तो बहुत कर लिया हमने, चार गाड़ी कर ली हमने, चार बंगले बना लिए, उत्थान तो बहुत हो गया, अब ये सब जाने वाला है। अभी कौन सा उत्थान करना है, आत्मिक उन्नति ये करनी है। उसके लिए हम 24 घंटे देने को राजी हैं, और इसमें 10 मिनट भी अगर इसका चिंतन कर ले ना, मनन कर ले, इसके लिए हम क्या कहेंगे, कईयों के पास है समय, देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, और कई क्या कर देते हैं, नहीं दे पाते हैं कोई कारण बस। अभी अपने एक समय को एक टाइम टेबल के रूप में बनाएं, दिनचर्या सेट कर लें, इस समय ये समय ये समय ये समय ये, क्योंकि भाई लोग बहुत बिजी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी है, बड़े सर्विस भी है, माताएं भी कई सर्विस करती है या बिजनेस करती है, बहुत बहने, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसमें भी अगर अपनी सेटिंग बना लेंगे तो सेट हो जाएगा। कोई भी किसी भी क्षेत्र में रह करके मुझे भाग्य बनाना है, क्योंकि इसी ऐसे ही समय पे भाग्य बनाना, और समय नहीं आएगा कि आपको कोई फ्री टाइम मिलेगा, मिलेगा कोई फ्री टाइम, अभी बाबा बहुत बिजी है ना, फिर जब फ्री टाइम हो जाएगा ना, बुढ़ापे में करेंगे। आप बुढ़े लोगों से पूछ लो, उनसे कभी कांटेक्ट में आप आइए, बुजुर्ग लोग ऐसी बातें करेंगे इससे तो हम ही ठीक है। वो टाइम तो बिल्कुल वो लोग फ्री नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है जैसे है जिस समय है उस समय ही अपने को क्या सोचो, हम फ्री है, हमारी सारी जवाबदारी किसने ली हुई है, बाबा ने ली है। हम कुछ करते हैं क्या, हम लोगों तो बहुत अनुभव आश्रम पे रह के होते, आप लोग भी करते होंगे, सोचती ये काम करना है कैसे होगा क्या होगा, देखा भी थोड़ी देर में कोई आया करके चला गया, थैंक्स बाबा, कैसे बाबा कराता है। आप लोग को भी सब कोई अनुभव होगा, चूंकि आप लोग अभी यहाँ बैठे नहीं, सुना नहीं पा रही है, एक दो को तो सुनाते होंगे, कैसे सारी कारोबार हम नहीं करे, सिर्फ निमित्त है, करण करावन हार बाबा मेरे द्वारा क्या है करा रहा है, और मेरा भाग्य बनाने के लिए, क्यों करा रहा मेरे से, मेरा भाग्य बनाने के लिए। कभी अलौकिक में भी आप लोग नहीं सोचना कि मैं करता हूँ, मैं अगर सेवा ना करूं बहन कुछ नहीं कर सकते है, ऐसा है ऐसा, हाँ मैं करूं तभी होगा, अगर मैं ज्ञान छोड़ के चला जाऊंगा मैं नहीं करूंगा तो ये बहन कुछ नहीं कर सकती है माताएं, आप करते हैं, बाबा मेरे द्वारा करा रहा, चूंकि उसको मेरा भाग्य बनाना है, मेरा भाग्य बनाने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ नियुक्त कर दिया है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा। जिस समय यज्ञ की शुरुआत हुई उस समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने स्थापना का कर्तव्य कराना शुरू किया, और ब्रह्मा बाबा पहले तो राजा महाराज जो कि ठाट कसी में रहा, बहुत मान मर्तबा था, लेकिन जब बाबा ने स्थापना का कर्तव्य कराया तो पता लगा उसे बहुत गाली खानी पड़ी, तो बाबा ने कहा मुझसे नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझसे नहीं होगा, बाबा इतना कुछ सुनना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था, बाबा ने उसको फिर क्या करा, साक्षात्कार में हजारों ब्रह्मा दिखा दिए, तुम नहीं करोगे ये करेगा। तब बाबा के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बाबा मैं ही करूंगा। तो आप लोगों से जो भी कुछ शेयर किया है, अपना जीवन सभी बनाए, नए साल में नई शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। ओम शांति।